पृष्ठ संख्या 191 अध्याय 11 इतिहास में कारण हिस्टोरिकल कॉजिशन। प्रोफेसर ओक्सर्ट के अनुसार कारण इतिहास के शब्दकोश का अंग नहीं है। इतिहास के संदर्भ में ओक्सर्ट का यह मत तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। अतः मनुष्यों के कार्यों के कुछ कारण होते हैं। सिंचाई के साधनों के अभाव में कुओं का निर्माण, यातायात के साधनों के अभाव में सड़कों का निर्माण कारणों का परिणाम रहा है। मैंडेलबॉम ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। उनके अनुसार ऐतिहासिक ज्ञान मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया में निहित है। परिणामस्वरूप इतिहास मानवीय कार्य व्यापार का अध्ययन है। मानवीय मस्तिष्क इन सभी कार्यकलापों का उद्गम स्थल होता है। कॉलिंगवुड के अनुसार कारण वह प्रमुख तत्व है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करता है। इतिहास का मनुष्य को बाध्य करने वाले तथ्यों का अध्ययन कारण के रूप में करता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर E.H. कार ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। इतिहासकार द्वारा अतीत की घटनाओं के पीछे कारण की गवेषणा का एकमात्र उद्देश्य सिद्ध करना है कि वर्तमान का निर्माण अतीत की आधारशिला पर हुआ है। डेविड थॉमसन ने स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान का पूर्णत्व अतीत का ही परिणाम है। इस प्रकार वर्तमान का कारण अतीत है। वर्तमान की प्रत्येक उपलब्धि के पीछे अतीत के कारण समाहित हैं। कारणों के अभाव में किसी परिणाम को ढूंढने का तात्पर्य इतिहास के उद्देश्यों की उपेक्षा करना है। मैंडेलबॉम का कथन यथोचित है कि सार्वभौमिक नियम के अनुसार प्रत्येक घटना के कुछ कारण होते हैं। हॉल्पन ने भी लिखा है कि क्रय विक्रय, दान, विनिमय, न्यायालय के न्याय, प्रशासनिक अध्यादेश के पीछे कुछ कारण निहित होते हैं। इतिहासकार का कार्य व्याख्या के परिवेश में अंतर्निहित कारणों को ढूंढना है। पृष्ठ संख्या 192। प्रोफेसर J.B. ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। जब ब्यूरी ने 1903 में इतिहास को विज्ञान के समकक्ष स्वीकार किया तो उसका उद्देश्य था कि कारणों की व्याख्या में मतैक्य होगा, परंतु कारणों की व्याख्या में इतिहासकारों में मतैक्य न होने से इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप पर आघात पहुंचा है। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करते समय इतिहासकारों के समक्ष अनेक कारण दिखाई देते हैं। 1. जर्मन सम्राट कैजर विलियम का व्यक्तित्व। 2. शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा। 3. उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें तुर्की साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य तथा रूसी साम्राज्य के अस्तित्व को संकट में डाल दिया था। यही नहीं, यूरोपीय शक्ति संतुलन को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। आधुनिक इतिहासकारों में मतैक्यता का अभाव प्रायः इतिहास के विद्यार्थियों को संदिग्धावस्था में डाल देता है। ऐसी परिस्थिति में इतिहास का विद्यार्थी कारणों की व्याख्या एक सामान्य मार्ग ढूंढकर समन्वित दृष्टि से न्यायोचित कारणों को बताता है। इतिहासकारों की कारण व्याख्या पर उनकी जाति, राष्ट्रीयता, धर्म तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण आदि का प्रभाव पड़ता है। इतिहास में कारण एक घटना अथवा क्रिया होती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय शक्तियों के बिगड़ते हुए संबंध की व्याख्या करते समय इतिहासकार के समक्ष अनेक कारण आते हैं। तो स्पष्ट है कि घटना के पीछे एक नहीं अनेक कारण क्रियाशील रहते हैं। प्रत्येक कारण परिस्थिति विशेष की उपज होता है। कॉलिंगवुड ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि इतिहासकार परिस्थिति जन्य कारणों की व्याख्या में अपने सिद्धांत तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विशेष प्रभावित होता है। इतिहासकार का पूर्वग्रही विचार ही प्रायः व्याख्या प्रधान होता है। कारण सिद्धांत की उत्पत्ति के संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। विलियम जेम्स के अनुसार इतिहासकार निष्कर्ष प्राप्ति के उद्देश्य के कारण तथा परिणाम की गवेषणा करता है। उद्देश्य तथा निष्कर्ष प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा इतिहासकार को उन कारणों की गवेषणा के लिए बाध्य करती है जो किसी घटना अथवा कार्य के मूल में होते हैं। देवी के शब्दों में यंत्र तथा उसकी सहायता से उत्पादित वस्तु से यह स्पष्ट हो जाता है कि यंत्र किसी वस्तु के उत्पादन में सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार वस्तु के उत्पादन का कारण यंत्र अथवा मशीन है। कारण कार्य का समीकरण रेल पटरी की भांति समानांतर है। पृष्ठ संख्या 193। कॉज कारण इफेक्ट परिणाम। कारण की पंक्ति में अंतर के परिणाम स्वरूप परिणाम में अंतर अवश्यंभावी है। कॉज कारण इफेक्ट परिणाम। प्रथम पंक्ति में सीधी रेखा में रेखांकित किया गया है, द्वितीय में कॉज कारण और इफेक्ट परिणाम को तिरछी पंक्ति से तिरछी लाइन से रेखांकित किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कारण के अनुसार ही परिणाम होता है। अत्यधिक शीत का कारण हिमपात तथा वर्षा का कारण मानसून होता है। प्राकृतिक कारणों का संबंध निश्चित तथा पारस्परिक होता है। कार्य कारण के संबंध में मेंडेलबाम की उक्ति तर्कसंगत प्रतीत होती है, जो किसी वस्तु को उत्पन्न करता है अथवा वस्तु में परिवर्तन करता है, जिसे कारण कहते हैं, उसके प्रभाव से परिवर्तित स्वरूप को प्रभाव कहते हैं। संपूर्ण ऐतिहासिक अतीत के अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य घटनाओं की क्रमबद्धता का विश्लेषण करना है। यदि इतिहास अतीत में मानवीय कार्यों का अध्ययन है, तो निश्चित रूप से इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य है कि वह कारणों की व्याख्या में बाह्य तथा आभ्यंतर पक्षों पर ध्यान दे, क्योंकि मनुष्य का कार्य तथा बाह्य आभ्यंतर प्रभावों का ही परिणाम होता है। सम्राट अकबर की राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति के कारणों की व्याख्या करते समय इतिहासकार अपने को अकबर की परिस्थिति में रखकर उसी के रूप में समस्याओं पर विचार करता है। परिस्थितियां बाह्य पक्ष होती हैं। अकबर की भावनाओं की अनुभूति कारण का अभ्यंतर पक्ष होता है। यहाँ कारण तथा परिस्थिति में अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। मेंडेलबाम के अनुसार किसी घटना के प्रमुख कारण को कारण कहते हैं तथा घटना से संबंधित छोटे छोटे कारणों को परिस्थिति कहते हैं। इतिहास में कारण की अवधारणा। अरस्तु ने सबसे पहले कार्य कारण संबंध में अपने विचार की अभिव्यक्ति की है। उसने कहा है कि कारणों के अभाव में किसी घटना अथवा कार्य का होना संभव नहीं है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कार्य कारण संबंध का अच्छा ज्ञान था। उसने अपनी ऐतिहासिक कृति के आरंभ में लिखा है कि उसके इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य ग्रीक तथा बर्बर जाति के कार्यों को सुरक्षित रखना तथा पारस्परिक युद्धों के कारणों को बताना है। महान यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडिडीस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसे कार्य कारण संबंध पृष्ठ संख्या 194 का अच्छा ज्ञान नहीं था। कॉलिंगवुड के अनुसार 15वीं सदी में कारण का तात्पर्य अपराध, दोषारोपण, युद्ध, पाप एवं गलत कार्य है। वास्तविक अर्थ में कारण की स्पष्ट अवधारणा 18वीं सदी की देन है। मॉन्टेस्क्यू ने कारण सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की है। प्रत्येक राजवंश के उत्थान, राजत्व काल तथा पतन के पीछे कुछ नैतिक, भौतिक तथा सामान्य कारण होते हैं। सब कुछ उसी के परिवेश के कारण घटता है। डेनियर के अनुसार इतिहास में कोई घटना एक नहीं अपितु अनेक कारणों का प्रतिफल होती है। इतिहासकार का कार्य इन्हीं कारणों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना होता है। एच कॉर ने स्पष्ट लिखा है कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देना तथा कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों को क्रम से प्रस्तुत करना ही इतिहास है। प्रोफेसर रोसेनफील्ड के अनुसार कारण सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य किसी तर्कयुक्त योजना के कारण तथा परिणाम संबंधों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना है। 20वीं सदी के इतिहासकारों की अवधारणा है कि किसी घटना के कारण क्रमबद्ध होते हैं, जैसे किसी साम्राज्य का उत्थान तथा पतन अ के पश्चात ब का होना निश्चित है। यह कोई निश्चित नियम नहीं अपितु एक मान्यता प्रदत्त स्वीकृत तथ्य है। ब की जानकारी प्राप्त करने के लिए अ की परिस्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। शीलर ने कहा है कि आधुनिक इतिहासकारों ने घटना की क्रमबद्धता को निश्चित करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। वह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि एक घटना की परिस्थिति दूसरी घटना की जानकारी के लिए पथ प्रदर्शक होगी। इस प्रकार कारणों की व्याख्या से इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास अतीत में मानवीय कार्यों का अध्ययन है। मानवीय कार्य अथवा घटना के कारणों को जानने का एकमात्र उद्देश्य किसी तर्कयुक्त योजना का ज्ञान प्राप्त करना है। उसे प्राधिकारों के विचारों के साथ बाह्य तथा आभ्यांतरिक कारणों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इतिहासकार इस प्रक्रिया के बीच अपने को रखकर घटना के विषय में सोचता है, क्योंकि घटना मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। कॉलिंगवुड का यह विचार तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ घटनाओं में मानवीय प्रक्रिया प्रधान न होकर प्राकृतिक कारण प्रधान होते हैं। प्रश्न संख्या 195। जैसे बाढ़, भूकंप तथा हिमपात आदि दैवीय प्रकोप मनुष्य की इच्छा के विपरीत परिणाम देते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के रूसी आक्रमण की विफलता का कारण हिमपात था, मोहम्मद तुगलक द्वारा दोआब में कर वृद्धि की योजना की विफलता का कारण अनावृष्टि तथा अकाल था। अतः इतिहासकार को ऐतिहासिक शोध में घटनाओं को प्रभावित करने वाले सभी आवश्यक कारणों की व्याख्या करनी चाहिए। यही एडवर्ड मेयर की कार्यकारण संबंधी अवधारणा है, परंतु डेविड थॉमसन के अनुसार अधिकांश आधुनिक इतिहासकार कारणों की समुचित व्याख्या से बचने का प्रयास करते हैं। कुछ इतिहासकारों के कारण व्याख्या का आधार चयनात्मक, विषयात्मक तथा एकपक्षीय होता है। विषय की जटिलता के कारण इतिहासकार व्याख्यात्मक पद्धति न अपनाकर वर्णनात्मक शैली का सहारा लेता है। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य कारण तथा उसके प्रभाव की समुचित व्याख्या करना है। प्रोफेसर जी बैरक लॉक ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहासकार को कारणों की व्याख्या की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे मात्र परिणामों पर ही केंद्रित होना चाहिए। यह तर्क उचित नहीं प्रतीत होता है। कारणों के अभाव में मात्र परिणामों को ढूंढना संभव नहीं है, क्योंकि कार्यकारण का समीकरण समानांतर रेखाओं की तरह होता है। एडवर्ड मेयर ने उचित ही कहा है कि कारणों का अनुसंधान ही ऐतिहासिक शोध तथा ऐतिहासिक आवश्यकता है। वॉल्स के अनुसार किसी घटना के अनेक कारणों को प्रस्तुत करने की ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य नहीं है। कारणों के प्रस्तुतीकरण के पश्चात इतिहासकार यह जानने का प्रयास करता है कि कारणों में प्रमुख कारण कौन था जिसके परिणाम स्वरूप घटना हुई। कारणों की क्रमबद्धता में वह सहायक तथा प्रमुख कारण की व्याख्या करता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बीजारोपण 1871 में हो गया, जब बिस्मार्क ने एल्सेस तथा लोरेन पर अधिकार किया था। उसके बाद घटनाओं का क्रम जारी रहा। कैजर विलियम की नीति, आर्थिक, औपनिवेशिक, सैनिक प्रतिद्वंदिता, मोरक्को संकट, फशोडा संकट, अगादीर संकट आदि घटनाएं हुई, फिर भी युद्ध प्रारंभ न हो सका। परंतु राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजीवो में हत्या ने प्रथम विश्व युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इस प्रकार कारणों में एक प्रधान कारण होता है जिसे घटना का मूल कारण कहते हैं, अन्य कारण सहायक होते हैं। इतिहासकार कारणों की क्रमबद्धता को निश्चित करता है। फ्रेंच इतिहासकार टेने ने लिखा है कि इतिहासकार कारणों के बिखरे सूत्रों को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उसे बुनकर कपड़े के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे मकड़ी अपने जाले को बुनती है। इस कार्य में वह क्रमबद्धता को प्रधानता देता है। पृष्ठ संख्या 196। इतिहास में नियतिवाद, डिटरमिनिज्म इन हिस्ट्री। नियतिवाद एक विश्वास है कि जो कुछ घटित होता है उसके एक या कई कारण होते हैं, और वह किसी कारण अथवा कारणों के भिन्न हुए बिना भिन्न तरीके से घटित नहीं हो सकता। नियतिवाद इतिहास की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव कार्य व्यापार की समस्या है। कार्ल आर पापर के अनुसार मानवीय कार्य व्यापार में सब कुछ संभव है। ई एच कार्ल की दृष्टि में पापर का यह तर्क अर्थहीन तथा मिथ्यापूर्ण है। इतिहास के अध्ययन का तात्पर्य अतीत में मानवीय कार्य तथा उपलब्धियों का अध्ययन करना होता है। मेंडेलबॉम ने उचित ही कहा है कि मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रियाएं ऐतिहासिक ज्ञान में निहित हैं। कॉलिंगवुड ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि इतिहास अतीत संबंधी मानवीय कार्यों का अध्ययन है। मनुष्य कारणों से प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य होकर कार्य करता है, अतः इतिहासकार को मानवीय व्यवहार के कारणों की गवेषणा करनी चाहिए। यदि इतिहास अध्ययन का उद्देश्य मनुष्य के कार्यों का अध्ययन है तो उसका तात्पर्य मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना होगा। इतिहासकार क्रियाशील मनुष्य का चित्र प्रस्तुत करता है। मनुष्य के अनुभव, विचार तथा व्यवहार का वर्णन करता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या अतीत और वर्तमान के मनुष्यों के अनुभव, विचार तथा व्यवहार में समानता है। इस संबंध में पोविक ने स्पष्ट लिखा है कि मानव स्वभाव एक समान न रहा होता तो कहानी कितनी जटिल होती। उनके अनुसार सदियों के बाद भी मानव स्वभाव अपरिवर्तनशील रहा है। पोविक का अटूट विश्वास है कि अतीत तथा वर्तमान में मानवीय स्वभाव तथा व्यवहार में समानता है। हजारों वर्षों के बाद हम भी मानवीय व्यवहार में परिवर्तन को ढूंढने में असफल रहे हैं। कॉलिंगवुड ने इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया है। यूनानियों का विश्वास नियतिवाद में नहीं है। उनके अनुसार इतिहास का स्वरूप लोचदार है, प्रबल मानवीय इच्छा के अनुसार उसके स्वरूप में प्रायः परिवर्तन होता रहा है। जंगली अवस्था तथा वैज्ञानिक युग के मनुष्यों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट है। प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन भूकंप बाढ़ के कारण द्रुत गति में होता रहा है। प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिवर्तन पृष्ठ संख्या 197 के साथ मानवीय स्वभाव व्यवहार तथा विचार में भी द्रुत गति से परिवर्तन होता है। कॉलिंगवुड ने स्पष्ट लिखा है कि मानवीय व्यवहार में स्थायित्व असंभव है। जीवन में कुछ भी अपरिवर्तित नहीं रह सकता। डेनियन ने भी कहा है कि परिवर्तन मानव जीवन का अभिन्न अंग है। अतः यह सत्य है कि परिस्थितियों में विभिन्नता का कारण मानवीय व्यवहार तथा उसके कार्यों में विभिन्नता स्वाभाविक है। चीन, भारत, अरब, अफ्रीका तथा यूरोप की भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण मानवीय स्वभाव तथा व्यवहार में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। मानवीय कार्य उन कारणों द्वारा निर्देशित होते हैं जिनकी पुष्टि सिद्धांततः की जा सकती है। E.H. कॉर ने सर इसाइया बर्लिन के इस कथन को अस्वीकार कर दिया है कि मानवीय व्यवहार के पीछे दैवीय शक्ति निर्णायक होती है। मानवीय व्यवहार की व्याख्या में इतिहासकार अनेक कारणों को ढूंढने का प्रयास करता है। नियतिवादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म। नियतिवाद एक विश्वास है परंतु नियति की प्रेरणा से कार्य करता है। बाह्य आंतरिक तथा अलौकिक शक्तियां मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित तथा विवश करती हैं। इतिहास की भारतीय तथा यूनानी अवधारणा हीगेल की विश्व आत्मा स्पिरिट, एडम स्मिथ का गुप्त हस्त हिडन हैंड, कार्ल मार्क्स का अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप में अटूट विश्वास प्रमाणित करता है कि मनुष्य की इच्छा के विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रख्यात अरब इतिहासकार इब्न खल्दून की इतिहास संबंधी अवयवी व्याख्या फिजियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में प्रमाणित करता है कि इतिहास प्रवाह में प्रवाहित होकर मनुष्य कार्य करता है। उसका कार्य के संबंध में न तो कोई व्यक्ति की इच्छा होती है और न स्वतंत्र अस्तित्व। मनुष्य की शारीरिक व्याख्या के अनुसार बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था होती है। उसी प्रकार किसी राजवंश तथा राज्य की स्थापना, विकास, संगठन, चरमोत्कर्ष तथा पतन अवश्यंभावी है। यही अटल नियति है। उदाहरणार्थ मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर तथा हुमायूं, अकबर तथा शासनकाल, विकास तथा प्रशासनिक संगठन का काल माना जाता है। शाहजहां का शासन समृद्धि, वैभव, कला, संस्कृति के विकास का पृष्ठ संख्या 198 चरमोत्कर्ष का काल है। औरंगजेब का दुर्भाग्य था कि उसे पतन काल में शासन का अवसर प्राप्त हुआ और वह पतन की अटल नियति को रोकने में असमर्थ था। यदि अकबर को भी इस युग में शासन का अवसर मिला होता तो भी पतन की गति को विपरीत दिशा में नहीं मोड़ सकता था। जिस प्रकार वृद्धावस्था में औषधि से अटल मृत्यु को कुछ क्षण के लिए रोका जा सकता है परंतु नियति मृत्यु असंभावी है, नियतिवाद के अवधारणा की व्यापक व्याख्या भारतीय मनीषियों ने धर्म ग्रंथों तथा हिंदू दर्शन में किया है। चित्रकूट में भरत एक सभा में कहते हैं कि पिता राजा दशरथ की मृत्यु तथा राम सीता लक्ष्मण के वनवास के एकमात्र दोषी वही है। उसी समय वशिष्ठ मुनि ने उन्हें समझाते हुए कहा था, सुनहु भरत भावी प्रबल बिहसि कहेउ मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसु अपजसु विधि हाथ। जहाँ पुरुषार्थ असफल होता है वही भारतीय मनुष्यों ने नियतिवादी अवधारणा की पुष्टि की है। न्याय वैशेषिक सिद्धांत में जहाँ यथार्थवाद की पुष्टि होती है कि परमाणुओं का अपना अस्तित्व है, वहीं एक सर्वोपरि क्रियात्मक सत्ता का उपादान कारण को मान्यता प्रदान की गई है। बौद्ध दर्शन में कारणत्व की परिभाषा पंचय समग्की है। कारण के वैयक्तिक अस्तित्व का खंडन किया गया है। यूनानी तथा भारतीय इतिहास अवधारणा युग चक्रवादी साइक्लिक कॉन्सेप्शन सिद्धांत पर आधारित है। इस अवधारणा के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में पुरुषार्थ में ह्रास तथा मानवीय सुखों में उत्तरोत्तर कमी का होना स्वाभाविक तथा नियतिवाद की पुष्टि करता है। घोर नैराश्य अवस्था में परम सत्ता विराट पुरुष की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाभ्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुलसीदास ने भी राम के अवतार को सामाजिक अनिवार्यता के रूप में वर्णित किया है। भगवान राम का जन्म सामाजिक तथा युग चक्रीय परियोजना के अंतर्गत हुआ है। जब जब हुई धर्म के हानि बाणही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री दुर्गा सप्तशती में भी शक्ति का अवतार युग चक्रीय परियोजना का परिणाम माना गया है। ब्राह्म रीति च माम लोकास तथा ब्राह्मरीति चमाम लोकास तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतिर्याहम करिष्याम्यरि संक्षयम्। पृष्ठ संख्या 199। भारतीय इतिहास अवधारणा तथा हिंदू दर्शन में एक सर्वव्यापी अवयवी विराट पुरुष के माध्यम से प्राकृतिक तथा सामाजिक तत्वों का अद्भुत समन्वय भारतीय मनुष्यों की परिकल्पना का परिणाम है। यह अवयवी विराट पुरुष सूर्य में चमकता है, बादलों में गरजता है, समीर में संचरण करता है, झंझावातों में स्वयमेव प्रभावित होता है। वही जन्म मृत्यु तथा काल स्वरूप है। उसके इंगित पर योद्धा युद्ध में लड़ते हैं तथा निमित्त मात्र तथा एक दूसरे का संहार करते हैं। व्यक्ति उसकी इच्छा का साधन तथा निमित्त मात्र होता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहा था कि मनुष्य मात्र ईश्वरीय इच्छा का साधन है। कर्म सिद्धांत में उसकी व्यक्तिगत इच्छा तथा आकांक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय मनुष्यों ने इतिहास प्रवाह तथा प्रवृत्तियों को भी स्वीकार किया है। मानवीय भूमिका का इतिहास में नगण्य भूमिका होती है। युग चक्रवादी अवधारणा के अनुसार धर्म का उत्थान तथा पराभव होता है। मानवीय सक्रियता सुषुप्ता तथा जागृति अवस्थाएं समसामयिक प्रवृत्तियों द्वारा सतत नियंत्रित होती रहती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी व्यापक व्याख्या की गई है। अतः युग परिवर्तन में मनुष्यों की क्रिया शक्ति प्रच्छन्न रहती है। इस प्रकार यांत्रिक प्रक्रिया का मूल स्वरूप नैतिक है। इसे विराट पुरुष के दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हुए कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात निष्कर्म कर्म करो, वांछित फल विराट पुरुष की इच्छा पर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश नियतिवादी सिद्धांत की पुष्टि करता है। सांद्रव्य दर्शन में विकास प्रक्रिया एक अटल एवं निश्चित नियम के अधीन है, जिसका उल्लंघन संभव नहीं है। यह परिणाम क्रम नियम है। आजीविका दर्शन के इस समस्त प्रकृति नियति संगति तथा भाव के नियंत्रण के अनुसार अग्रसर होती है। नियति जीवन की अटल गति है, संगति आकस्मिकता की क्रिया है तथा भाव प्रकृति का। पृष्ठ संख्या 200 निजी स्वरूप है। टीकाकार गुणरत्न का अभिमत है कि कांटों की तीव्रता तथा पशु पक्षियों की विचित्रता को कौन बनाता है, यह स्वभाव जन्य है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो स्वेच्छानुसार कार्यरत है। इतिहास मानवीय मनुष्यों की नगण्यता को स्पष्ट रूप से अधिकांश इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। किसी वस्तु के विकास और निर्माण की निमित्त प्रवृत्ति एक ओर इसकी अंतर्निहित शक्ति का प्रत्यक्षीकरण तथा दूसरी ओर अन्य वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण के साथ अन्य वस्तुओं के विकास और निर्माण के इतिहास की श्रृंखला है। इस प्रकार व्यक्ति और समष्टि का विकास अन्योन्य संबंधी और परस्पराश्रित है। वेदांतों में व्यक्तिक अस्तित्व का खंडन किया गया है। आत्मा जैसे किसी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी वर्तमान अथवा दृष्टिगोचर है वह अक्षुण प्रगति का स्वरूप है। प्रत्येक पदार्थ समग्र सृष्टि के संविधान की परस्पराश्रिता को प्रतिबिंबित करता है। व्यक्ति मात्र संस्कारों की रचना है या स्कंधों का समूह है। वह न कारक है और न वेदक।